एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
संगीत
ज्ञान गोष्ठी में स्वागत है। आज हम एक ऐसे लेखक की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जिनके नाम से ही अक्सर खामोशी, ठहराव और शायद थोड़ी बेचैनी का एहसास होता है।
सैमुअल बेकेट।
जी हाँ, सैमुअल बेकेट।
और साथ ही मेरा मानना है कि गहरे मानवीय सत्य और कभी कभी एक अजीब से हास्य का भी एहसास होता है उनके नाम से। बेकेट मतलब 20वीं सदी के वो आयरिश लेखक
आयरिश, हाँ,
जिन्होंने पेरिस को अपना घर बनाया, फ्रेंच भाषा को अपनी कलम और अपने काम से साहित्य और रंगमंच की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया।
बिल्कुल, नोबेल पुरस्कार विजेता। और उनका नाटक वेटिंग फॉर गडो, उसका जिक्र आते ही जैसे खाली स्टेज उभरता है आंखों के सामने।
हाँ बिल्कुल, दो इंतजार करते किरदार
और वो गुडो जो कभी नहीं आता,
कभी नहीं आता।
तो आज की इस चर्चा का मकसद यही है कि बेकेट के जीवन की परतें, उनका वो क्रांतिकारी लेखन और उनकी जो स्थायी विरासत है, उसके सार को समझा जाए।
हाँ, तो शुरुआत अगर परिचय से करें,
हाँ,
सैमुअल बार्कले बेकेट,
हाँ,
जन्म हुआ 1906 में डबलिन के पास,
अच्छा,
और निधन हुआ 1989 में पेरिस में। आयरिश थे जैसे आपने कहा, पर ज्यादातर उन्होंने फ्रेंच में लिखा
ये दिलचस्प है,
है ना।
हाँ।
और उन्हें 1969 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, और उसका जो प्रशस्ति पत्र था वो भी बड़ा दिलचस्प है।
हाँ, मैंने पढ़ा था उसके बारे में। उसमें कहा गया था कुछ ऐसा कि उनकी लेखन के लिए जो उपन्यास और नाटक के नए रूपों में आधुनिक मनुष्य की दरिद्रता में उसकी उदात्तता प्राप्त करता है।
बिल्कुल,
ये दरिद्रता में उदात्तता वाली बात, मतलब सब्लिमिटी, एम्पावरिशमेंट, ये सोचने पर मजबूर करती है।
बहुत गहरा है ये।
मतलब जहां सब कुछ छीन लिया गया हो, जहां सिर्फ कमी हो, वहां भी कोई ऊंचाई, कोई गरिमा खोजना, ये उस समय की जो सोच थी उससे तो काफी अलग रहा होगा।
बिल्कुल अलग। उस दौर में तो जोर प्रगति पर था, सफलता पर, चीजों का अर्थ खोजने पर। और बेकेट एक तरह से कह लेते थे कि मनुष्य की असलियत शायद उसकी कमी में है, उसकी सीमा में, उसकी निरर्थकता में छिपी है, और उसी को स्वीकारने में शायद एक अजीब सी उदात्तता है। ये उनके पूरे काम का आप कह सकते हैं केंद्रीय भाव बन गया।
चीजों को कम करना,
हाँ, चीजों को कम करना, भाषा को उसकी एकदम सीमा तक ले जाना ताकि जो बच जाए वो शायद ज्यादा सच्चा हो।
तो ये समझने के लिए कि वो इस सोच तक, इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, हमें थोड़ा उस दौर को देखना होगा जिसमें वो जी रहे थे। 1906 का आयरलैंड, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य का ढलता सूरज एक तरफ,
और दूसरी तरफ आयरिश राष्ट्रवाद का उबाल। ईस्टर विद्रोह भी हुआ बाद में 1916 में।
हाँ, और उनकी अपनी पृष्ठभूमि भी इसमें एक पेंच डालती है। जैसा आपने शुरू में इशारा किया, वो एक समृद्ध प्रोटेस्टेंट एंग्लो आयरिश परिवार से थे।
जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि वो न पूरी तरह अंग्रेज थे, न पूरी तरह उस कैथोलिक आयरिश बहुमत का हिस्सा थे।
तो एक बाहरी होने का एहसास,
बिल्कुल, किसी भी खेमे में पूरी तरह फिट न होना, ये एहसास शायद उनके लेखन में जो अलगाव दिखता है, जो अनिश्चितता दिखती है, उसकी जड़ों में कहीं ना कहीं रहा हो।
और दुनिया भी तेजी से बदल रही थी। पहला विश्व युद्ध हो चुका था, पुरानी सारी मान्यताएं जैसे ध्वस्त हो गई थीं।
खोई हुई पीढ़ी का दौर।
हाँ, लॉस्ट जनरेशन, मोहभंग। और आधुनिकतावाद कला और साहित्य में नए रास्ते तलाश रहा था। जेम्स जॉयस, टीएस एलियट जैसे लोग परंपराओं को तोड़ रहे थे। क्या बेकेट सीधे तौर पर जुड़े थे इनसे?
वो उस माहौल का हिस्सा तो जरूर थे, खासकर जब वो पेरिस गए। पेरिस उस समय अवांत गार्डे सोच का, आप कह सकते हैं, गढ़ था।
अच्छा,
उनकी मुलाकात जेम्स जॉयस से हुई। वो कुछ समय के लिए उनके सहायक भी रहे।
जॉयस के सहायक?
ये तो बड़ी बात है।
हाँ
बिल्कुल, जॉयस का प्रभाव तो था उन पर, जाहिर है, लेकिन बेकेट को जल्दी ही ये समझ आ गया कि उन्हें अपनी राह अलग बनानी होगी। जॉयस की वो जटिलता, वो भाषाई समृद्धि, उससे अलग शायद भाषा को कम करने की राह, मौन की ओर जाने की राह।
और दार्शनिक स्तर पर अगर देखें तो अस्तित्ववाद, फेनोमेनोलॉजी, ये सब बातें हवा में थीं। सार्थर, कामू जैसे विचारक थे।
हाँ, और वो अर्थहीनता, स्वतंत्रता, मानवीय स्थिति, इन सब पर सवाल उठा रहे थे।
तो क्या इसका असर बेकेट पर पड़ा?
गहरा असर पड़ा। उनके काम में अस्तित्ववादी चिंताएं तो साफ दिखती हैं। जीवन का कोई तयशुदा मतलब ना होना, संवाद की मुश्किलें, अकेलेपन का बोझ। हालांकि ये भी सच है कि वो खुद को किसी वाद में बांधने से हमेशा बचते थे।
अच्छा,
उनका अंदाज दार्शनिक से ज्यादा कह सकते हैं कलात्मक था। वो इन सवालों को जीते थे, किरदारों के जरिए महसूस कराते थे, न कि सीधे तौर पर उन पर कोई बहस करते थे।
और फिर दो विश्व युद्ध हुए, हॉलोकॉस्ट हुआ, इन घटनाओं ने यकीनन उनकी इस सोच को और पुख्ता किया होगा कि दुनिया शायद तर्कसंगत या न्यायपूर्ण नहीं है।
हाँ बिल्कुल, मानवीय क्रूरता और अस्तित्व की अर्थहीनता जैसे और उभर कर सामने आई होगी।
उनके शुरुआती जीवन पर अगर नजर डालें, डबलिन के उपनगर फॉक्सरॉक में जन्म, पिता नर्म स्वभाव के थे, लेकिन माँ के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ी सख्त मिजाज थीं।
हाँ, और अपेक्षाएं रखने वाली। कहते हैं कि माँ के साथ उनका रिश्ता काफी तनाव भरा था, और इसकी झलक उनके किरदारों के आपसी रिश्तों में भी कभी कभी दिखती है।
अच्छा।
वो अपने उस मध्यम वर्गीय प्रोटेस्टेंट परिवेश से भी कुछ कटा हुआ सा महसूस करते थे।
शिक्षा तो अच्छी हुई उनकी।
हाँ,
पुटोरा रॉयल स्कूल, जहां ऑस्कर वाइल्ड भी पढ़े थे।
जी हाँ, और फिर ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन। भाषाओं में कमाल थे, फ्रेंच, इतालवी, दांते का उन पर शुरुआती प्रभाव भी रहा।
और फिर 1928 में पेरिस गए, जॉयस से मिले, लेकिन आपने कहा था एक दिलचस्प मोड़ आता है इसके बाद।
हाँ, वो मोड़ ये था कि पेरिस से लौटकर 1930 में उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाना शुरू तो किया, पर बहुत जल्दी उनका अकेडमिक दुनिया से मोह भंग हो गया।
अच्छा, क्यों?
शायद वो माहौल उन्हें रास नहीं आया, और उसी दौरान वो एक गहरे मनोवैज्ञानिक संकट से गुजरे। डिप्रेशन, पैनिक अटैक, जीवन की अर्थहीनता का बहुत तीव्र एहसास। ये इतना गहरा था कि 1931 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी, और अगले कई साल उन्होंने यूरोप में लगभग भटकते हुए बिताए।
ये जानना वाकई दिलचस्प है। हम अक्सर लेखकों को उनके काम से जानते हैं, उनके अंदरूनी संघर्षों का अंदाजा कम ही होता है। तो क्या ये संकट, ये भटकना उनके लेखन के लिए एक तरह का कच्चा माल बना?
हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इस दौर ने उन्हें मानवीय पीड़ा और अस्तित्व के जो अंधेरे कोने हैं उनका सीधा अनुभव दिया। इसने शायद उन्हें सतहीपन से दूर और ज्यादा बुनियादी सवालों की ओर धकेला,
और यही अनुभव बाद में उनके लेखन की रीढ़ बना।
बिल्कुल, 1930s के दशक के अंत तक वो फिर से लिखने लगे थे। पहली किताब आई मॉ ब्रिक्स देन किक्स, वो पेरिस में बस गए। सुजैन देचेवॉक्स ड्यूमेस्नेल उनकी जीवन संगीनी बनी, जो जिंदगी भर साथ रहीं।
और फिर आया दूसरा विश्व युद्ध। ये भी एक हैरान करने वाली बात है कि इतने अंतर्मुखी, इतने निराशावादी से लगने वाले लेखक ने, उन्होंने फ्रांसीसी प्रतिरोध में, रेजिस्टेंस में सक्रिय भूमिका निभाई।
हाँ, नाजियों के खिलाफ जासूसी की, शरणार्थियों की मदद की। इसके लिए उन्हें बाद में फ्रांस सरकार से सम्मान भी मिले, क्रूए द गेर, मेडाई द ला रेजिस्टेंस जैसे, पर उन्होंने कभी इसका ढिंढोरा नहीं पीटा।
ये उनके चरित्र का एक और पहलू दिखाता है।
बिल्कुल, शायद उस चरम स्थिति में, उस नैतिक संकट के समय, चुप रहना या निष्क्रिय रहना उनके लिए संभव नहीं था, और युद्ध के अनुभव ने, उस क्रूरता, उस अनिश्चितता ने उनके लेखन पर भी गहरा असर डाला। ऐसा लगता है जैसे इसने कला के सारे जो गैर जरूरी दिखावे थे वो उनसे छीन लिए।
और युद्ध के बाद ही वो दौर आया जिसे लेखन का उन्माद कहा जाता है ना?
हाँ, 1945 से 1950 के बीच का समय, और इसी दौर में उन्होंने वो सबसे बड़ा कदम उठाया, फ्रेंच में लिखने का फैसला।
हाँ, ये बात मुझे अभी भी थोड़ी अटकाती है, अपनी मातृभाषा अंग्रेजी छोड़कर फ्रेंच में लिखना, इसका क्या कारण था?
देखिए, ये एक बहुत सोचा समझा, एक तरह से कहें तो कलात्मक निर्णय था। उनका मानना था कि अंग्रेजी भाषा उनके लिए बहुत सहज थी, बहुत जानी पहचानी थी।
अच्छा।
उसमें लिखते हुए वो आदतों और शैलियों के जाल में, उनके अपने शब्दों में कहें तो ऑटोमेटिज्म्स में फंस जाते थे। फ्रेंच उनके लिए एक बाहरी भाषा थी, उसमें उन्हें शब्दों के साथ ज्यादा संघर्ष करना पड़ता था, ज्यादा सटीक होना पड़ता था। वो इसे बिना शैली के लिखने का, भाषा की एकदम हड्डियों तक पहुंचने का एक तरीका मानते थे।
एक तरह का शुद्धिकरण।
हाँ बिल्कुल, एक कलात्मक शुद्धिकरण।
और इसी फ्रेंच दौर में उनकी वो महान रचनाएं सामने आई, वो गद्यत्रयी मलॉय मेलोंडाइज, द अननेमेबल।
जी।
और बेशक नाटक वेटिंग फॉर गोडो,
अनअटेंड टू गोडो,
जिसमें 1953 में पेरिस प्रीमियर के बाद उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया। हालांकि मैंने सुना है वो प्रसिद्धि से हमेशा असहज रहे।
हाँ बहुत, वो निहायत ही एकांत पसंद इंसान थे। नोबेल पुरस्कार मिलने को भी उन्होंने एक आपदा कहा था।
सच में?
हाँ, और पुरस्कार राशि भी उन्होंने दान कर दी थी। वो पेरिस में सुजैन के साथ बहुत सादा जीवन जीते रहे, और अपने लेखन में और भी ज्यादा अति सूक्ष्मवाद, मतलब मिनिमलिज्म की ओर बढ़ते गए।
तो चलिए अब उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं और उनमें जो विषय हैं उन पर थोड़ी बात करते हैं।
जरूर।
उनके काम में कुछ धागे तो जैसे लगातार दिखते हैं, वो मानवीय चेतना की भूल भुलैया, अस्तित्व की चिंता, भाषा की सीमाएं, और ये जिसे आपने शुरू में असफलता का सौंदर्य शास्त्र कहा।
हाँ, एस्थेटिक्स ऑफ फेलियर, मतलब सफलता में नहीं बल्कि कोशिश करने, असफल होने और फिर से कोशिश करने में ही शायद कोई मूल्य देखना।
ये बड़ा अनोखा विचार है,
है ना? उनकी शुरुआती रचनाओं जैसे मर्फी में भी इसकी झलक थी। किरदार बाहरी दुनिया से कटकर अपने मन की शांति खोजना चाहता है। फिर आती हैं वो फ्रेंच गद्यत्रयी मोलॉय, मेलॉन डाइज, द अननेमेबल। ये उपन्यास पारंपरिक कहानी कहने के बजाय चेतना के प्रवाह को पकड़ते हैं, या यूं कहें कि चेतना के बिखराव को।
बिखराव को कैसे?
मतलब पढ़ते हुए ये सवाल उठते हैं कि कौन बोल रहा है, क्या वो सच बोल रहा है, क्या मैं का कोई एक स्थिर रूप है भी। ये उपन्यास पाठक को जैसे घेर लेते हैं इन सवालों से।
ये तो पढ़ने में काफी चुनौतीपूर्ण लगता होगा फिर, पाठक को कोई बना बनाया रास्ता नहीं मिलता।
हाँ बिल्कुल, ये पाठक से भी मेहनत की मांग करता है। ये पहचान, स्मृति, भाषा की पकड़ से जो सच्चाई छूटती जा रही है, उन जैसे विषयों से जूझते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई अशरीरी आवाज बोल रही है, जो खुद अपनी पहचान को लेके पक्की नहीं है।
अच्छा,
ये आधुनिक साहित्य में चेतना के चित्रण को जेम्स जॉयस से भी शायद एक कदम आगे ले जाता है, और ज्यादा खंडित और ज्यादा अनिश्चित दुनिया में।
और फिर आता है वेटिंग फॉर गॉडो, शायद उनका सबसे प्रसिद्ध काम।
हाँ, दुनिया भर में
दो किरदार, वैलेडिमिर और एस्ट्रेगान, एक सुनसान सी जगह पर रोज आते हैं गोडो नाम के किसी व्यक्ति का इंतजार करने,
जो कभी नहीं आता।
जो कभी नहीं आता, और वो समय काटने के लिए अजीबोगरीब बातें करते हैं, खेलते हैं, झगड़ते हैं। नाटक में बजाहिर तो कुछ नहीं होता।
हाँ, यही कहा जाता है।
लेकिन ये कुछ नहीं होना ही इतना शक्तिशाली कैसे बन जाता है?
यही तो बेकेट का कमाल है। उन्होंने पारंपरिक नाटक के सारे नियम जैसे तोड़ दिए। कोई स्पष्ट कथानक नहीं, कोई चरित्रों का विकास नहीं होता, कोई समाधान नहीं मिलता। पर उसी दोहराव से, उसी खालीपन से, उसी बेमतलब सी लगने वाली बातचीत से वो इंतजार की निरर्थकता को दिखाते हैं। उम्मीद और निराशा के बीच जो मानवीय स्थिति झूलती रहती है उसे दिखाते हैं। और शायद अर्थ की हमारी जो अंतहीन तलाश है उसे उजागर करते हैं।
और ये ट्रेजेडी भी है और कॉमेडी भी है,
है ना?
बिल्कुल
ट्रेजिक कॉमेडी। किरदारों की हालत तो दयनीय है, पर उनकी हरकतें अक्सर बहुत हास्यास्पद होती है।
गोडो के बाद आया एंड गेम, वो शायद और भी ज्यादा अंधकारमय लगता है।
हाँ कह सकते हैं, एंड गेम ज्यादा घुटन भरा है, क्लॉस्ट्रोफोबिक है। एक बंद कमरा है, चार अपाहिज से किरदार हैं।
हेम, क्लोव, नेग, नेल।
हाँ, ऐसा लगता है जैसे दुनिया खत्म हो चुकी है या होने वाली है। यहाँ उम्मीद की किरण और भी कम लगती है। किरदार अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं में जैसे कैद हैं, और उनके रोजमर्रा के जो कर्मकांड हैं वो बस मौत को टालने की कोशिश भर लगते हैं।
इसमें भी काला हास्य है।
हाँ, काला हास्य तो है, पर निराशा का भाव ज्यादा गहरा है इसमें।
और बाद की रचनाओं में वो और भी सिकुड़ते गए अति सूक्ष्मवाद की ओर, जैसे क्रैब्स लास्ट टेप।
हाँ, जिसमें एक बूढ़ा आदमी सिर्फ अपनी पुरानी टेप रिकॉर्डिंग सुनता है, स्मृति और वास्तविकता के बीच का फासला।
या हैप्पी डेज, जिसमें एक औरत कमर तक जमीन में धसी है
और फिर गर्दन तक,
लेकिन फिर भी बोलती रहती है, आशावादी बनी रहती है।
सही, वो भाषा और रूप के साथ लगातार प्रयोग करते रहे। शब्द कम होते गए, खामोशी बढ़ती गई। इसे कभी कभी अशब्द का साहित्य भी कहा जाता है, लिटरेचर ऑफ द अनवर्ड।
क्या मतलब है इसका?
जैसे वो दिखाना चाह रहे हों कि जो सबसे जरूरी है, जो सबसे गहरा है, वो शायद शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। वो भाषा की पकड़ से बाहर है, मौन में ज्यादा अर्थ है।
तो अगर हम उनके मुख्य योगदान को समेटना चाहें तो वो क्या होगा? सिर्फ कुछ बेहतरीन नाटक या उपन्यास लिखना, या उससे भी बढ़कर कुछ?
मुझे लगता है उनका योगदान साहित्य की समझ को ही बदलना था। गद्य में उन्होंने चेतना के चित्रण को नई दिशा दी, पहचान और वास्तविकता की जो अनिश्चितता है उसको केंद्र में ले आए। नाटक में उन्होंने थिएटर ऑफ द एब्सर्ड की नींव रखी, हालांकि जैसा मैंने कहा उन्हें ये लेबल पसंद नहीं था।
हाँ।
उन्होंने दिखाया कि ठहराव से, दोहराव से, किरदारों की सिर्फ शारीरिक उपस्थिति से भी कितना शक्तिशाली ड्रामा पैदा किया जा सकता है। अर्थहीनता से अर्थ निकालना, ठहराव से तनाव पैदा करना।
और ये असफलता का सौंदर्य शास्त्र, ये विचार मुझे आज भी बहुत प्रासंगिक लगता है, खासकर आज की दुनिया में जहाँ सफलता का दबाव इतना ज्यादा है।
बिल्कुल, बेकेट का काम हमें याद दिलाता है कि अपूर्णता भी ठीक है, कोशिश करते रहना महत्वपूर्ण है, और यहाँ तक कि भाषा की जो सीमाएं हैं उन्हें स्वीकारना भी मूल्यवान हो सकता है।
उनका द्विभाषी लेखन भी इसी से जुड़ता है क्या? फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों में लिखना, खुद ही अनुवाद करना।
हाँ, ये भी भाषा की प्रकृति पर एक तरह की टिप्पणी है। कैसे अलग अलग भाषाएं दुनिया को अलग अलग ढंग से पकड़ती हैं या नहीं पकड़ पाती।
उनका प्रभाव किन लेखकों पर पड़ा, क्या आप कुछ नाम बता सकती हैं?
अरे बहुतों पर। नाटककारों में हेरल्ड पिंटर, टॉम स्टॉपर्ड, एडवर्ड एल्बी, उपन्यासकारों में जेएम क्विज़ी, पॉल ऑस्टर, इन सब पर उनका गहरा असर दिखता है।
हाँ, बिकेटियन शब्द ही चल पड़ा है अब तो।
बिल्कुल।
निराशा, काले हास्य और अस्तित्वगत ठहराव वाली स्थितियों के लिए अब ये शब्द इस्तेमाल होता है, और आज भी उनके नाटक दुनिया भर में खेले जाते हैं, उन पर लगातार अकादमिक शोध होता रहता है।
उनके कुछ मशहूर कथन भी हैं जो उनके नजरिए की अच्छी झलक देते। सबसे प्रसिद्ध शायद वो वर्स्ट वर्ड हो से है।
हाँ, एवर ट्राइड एवर फेल्ड नो मैटर, ट्राई अगेन फेल अगेन फेल बेटर।
हिंदी में अगर इसका भाव समझें तो हमेशा कोशिश की, हमेशा असफल हुए, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो, फिर से असफल हो, बेहतर ढंग से असफल हो। ये महज एक कहावत नहीं है, यह उनके दर्शन का जैसे सार है। मूल्य सफलता में नहीं बल्कि उस अथक प्रयास में है, असफलता को स्वीकार करने और फिर से उठ खड़े होने में है, शायद हर बार थोड़ी बेहतर समझ के साथ असफल होने में।
वेटिंग फॉर गोडो की वो पंक्ति भी बहुत याद आती है, नथिंग हैपन्स, नोबडी कम्स, नोबडी गोज, इट्स ऑफुल।
कुछ नहीं होता, कोई नहीं आता, कोई नहीं जाता, ये भयानक है।
वो ठहराओ, वो खालीपन,
बिल्कुल सही पकड़ती है ये लाइन।
और उसी नाटक में एक और विचार है दुनिया के आंसुओं के बारे में।
हाँ, द टीयर्स ऑफ द वर्ल्ड आर अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, कि दुनिया के आंसू एक निश्चित मात्रा में है, एक के रोने पर दूसरा चुप हो जाता है, हंसी के साथ भी यही सच है।
ये ब्रह्मांड की उदासीनता पर एक बहुत ठंडी सी टिप्पणी लगती है
ना? बिल्कुल।
और द अननेमेबल का वो अंत जो उम्मीद और निराशा का एक अद्भुत मिश्रण है, आई कांट गो ऑन, आई विल गो ऑन,
मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं आगे बढ़ूंगा, ये शायद मानवीय स्थिति का सबसे सटीक, सबसे विरोधाभासी वर्णन है। हार मानने की इच्छा भी है और चलते रहने की मजबूरी भी।
एक और कथन जो उनके कलात्मक संघर्ष को दिखाता है वो थ्री डायलॉग से है।
हाँ, जहाँ वो कहते हैं कि कलाकार की स्थिति है व्यक्त करने के लिए कुछ भी नहीं है, व्यक्त करने के दायित्व के साथ।
कहने को कुछ नहीं है पर कहना जरूरी है।
बिल्कुल, ये विरोधाभास ही शायद सृजन का स्रोत है उनके लिए।
ये सारी बातें वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। बैकेट का काम अक्सर मुश्किल लगता है, कभी कभी निराशाजनक भी लग सकता है, वो हमें चुप्पी और शून्यता का सामना करवाते हैं।
हाँ, ये आसान नहीं है।
लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वो अर्थ उस शून्यता के बावजूद नहीं ढूंढ रहे थे, बल्कि उसी शून्यता के भीतर, उसी लगातार चलते रहने में, कोशिश करते रहने के उस मानवीय संघर्ष में जो अक्सर हास्यास्पद भी लगता है?
ये एक बहुत गहरा सवाल है, और शायद आप सही कह रहे हैं। शायद वो यही इशारा कर रहे थे कि जब सारे बाहरी अर्थ, सारे सहारे ढह जाते हैं, तब भी मनुष्य के भीतर टिके रहने की, बोलते रहने की, इंतजार करते रहने की एक अजीब सी ताकत होती है, एक जिद होती है। शायद यही बेहतर ढंग से असफल होना है। और ये सवाल कि हमारे अपने जीवन में, हमारी अपनी चुनौतियों में, हमारी असफलताओं के संदर्भ में इसका क्या मतलब हो सकता है, ये सवाल बेकेट हमारे लिए छोड़ जाते हैं सोचने के लिए।
संगीत
फिर मिलेंगे अगले अंक में, एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक तरफ फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।